क्षण अंगर जीवन की कलिका, कल प्रात काल खिली न खेल, मलयाचल की शुच शीतल वाय, सुगंध समेत मिली न मेल, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले अरहंत अरि रसना, फिर अंत समय में ही लिए न मेल। भाव निक्षेप और स्थापना निक्षेप पर अपन चर्चा कर रहे थे। भाव निक्षेप कहते हैं तत्पर्याय परिणतन द्रव्यम भाव, उस पर्याय रूप से परिणत जो द्रव्य होता है उसको जब अपन अपने वचनों से प्रस्तुत करते हैं तब उसकी प्रस्तुति का नाम भाव निक्षेप है। निक्षेप का अर्थ होता है रखना या डालना, क्षिप धातु से बनता है, नी उपसर्ग लगा करके, जैसे पुष्पांजलि क्षिपामि ऐसा बोलते हैं ना, अथवा पुष्पांजलि क्षिपेत, ये शब्द भी बोले जाते हैं पूजा के बीच में। क्षिपेत वहां पर क्षिपेत का अर्थ होता है डालना, ऐसे रखना नहीं हो वहां, क्षिपेत का अर्थ डालना होता है। और निक्षेप का अर्थ होता है न्यास करना, जैसे शिलान्यास करते हैं ना, तो उसको निक्षेप कहते हैं। तो इसी तरह जगत में ये आगम के विषयों को जो प्रस्तुत किया जाता है वो निक्षेप है, और भाव निक्षेप जब जिनेन्द्र भगवान साक्षात समाव शरण में विराजमान होते हैं और उनको अपन तीर्थंकर कहते हैं, उनकी भक्ति पूजा आदि करते हैं, उनसे धर्म श्रवण आदि करते हैं, तो वो भाव निक्षेप रूप आराधना होती है। भाव निक्षेप से जो अरहंत है उनकी आराधना होती है, तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया होगी। फिर दूसरी प्रक्रिया ये स्थापना निक्षेप वाली आराधना होती है। अब स्थापना निक्षेप से जो अरहंत है उसमें एक ध्यान में रखने की बात है, उसमें अरहंत स्थापना निक्षेप से है, ये ध्यान में रखना। उनकी आराधना जिन पदार्थों से आप करोगे वो पदार्थ स्थापना निक्षेप वाले पदार्थ नहीं है, समझ में आ रही बात। नहीं तो फिर आप एक सुपारी ले लो और सुपारी में अष्ट द्रव्यों की स्थापना करके उदक चंदन बोल करके चढ़ा दो, ऐसी पद्धति आगम में नहीं है। अगर कोई कर ले तो फिर देखिए सबके अपने अपने मन है, सबके पास अपना वचन बल भी है, जिसको जो बोलना है सो बोले, जिसको जो सोचना है सो सोचे, लेकिन अगर आगम पर अपन ध्यान देंगे तो फिर स्थापना निक्षेप भगवान के प्रति है, है ना। उनकी पूजा में स्थापना की चर्चा नहीं है, उनकी पूजा में जब उनका आह्वान करके अपन उनको सुख प्रतीक अथवा सुख प्रतिष्ठ, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में ठोना कहते हैं, उस पर आमंत्रित करते हैं, तब उनको अक्षतों में स्थापित करके केवल थोड़ी देर के लिए, जब तक अपन पूजा कर रहे हैं उतनी देर के लिए विराजमान करते हैं, फिर अंत में विसर्जित भी कर देते हैं। विसर्जित करने के बाद वो जो अक्षत है वो अरहंत भगवान की स्थापना रूप नहीं है, वो भगवान को अपन ने विसर्जित करके वहां से उनका वो कर दिया, अभाव कर दिया है। और अपन उसको ऐसे विनय इसलिए करते हैं कि भगवान जिस पर इतनी देर विराजमान थे तो उसकी अपन विनय कर लेते हैं कि उतने समय तक के भगवान का उसमें संपर्क रहा, और जैसे चौके में आहार होने के बाद कुछ माताएं कुछ बहनें जहां पर आचार्य श्री बैठे होते हैं जिस पाटे पर, उसको ऐसे करके थोड़ा सा वहां पर आचार्य श्री के चरणों का गंधोदक भी पड़ा हो तो उसको ऐसे करके लगा लेते हैं। तो ये एक आदर की प्रक्रिया होती है। अब स्थापना निक्षेप में सबसे मुख्य बात समझने की ये थी कि भगवान की स्थापना है, द्रव्यों की स्थापना नहीं है, क्योंकि जो उपलब्ध वस्तु है, उपलब्ध वस्तु में उपचार नहीं किया जाता। मुख्या भावे प्रयोजने सति यह प्रवर्तते स उपचार। मुख्य वस्तु का अभाव होने पर प्रयोजनवश यानी अपना कोई काम करना है अपने को, तो मुख्य का तो अभाव वो वस्तु है ही नहीं अपने पास, तब फिर अपन उपचरित प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, किसी चीज को किसी और में स्थापित करते हैं। अब जैसे अपने पास अभी भगवान 24 तीर्थंकर उपलब्ध नहीं है, तब अपन स्थापना करके भगवान की आराधना करते हैं, और स्थापना केवल भगवान की गई है, उनकी आराधना में जो पदार्थ अपन प्रयोग में लाने वाले हैं उनकी स्थापना नहीं बताई है शास्त्रों में। फिर जहां की जैसी प्रक्रिया चल रही हो और जहां का जैसा जिनको निर्णय हो, जिन्होंने जो पद्धति मान रखी हो, उसके विषय में हमारा कोई हस्तक्षेप या कोई मंतव्य नहीं है, वो उनकी निजी व्यवस्था है। लेकिन आगम की बात पूछो तो फिर आगम में जो बताई गई है वस्तुएं तो वही रहेंगी जो आगम में बताई गई, और हिंसा अहिंसा परिग्रह अपरिग्रह राग वीतराग श्रृंगार वैराग्य, ये सारे तर्क जो हैं जो आज लोग देते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, अपने पूर्वाचार्यों को बहुत अधिक ज्ञान था, इसलिए ये तर्क देकर के अपन अपने पूर्वाचार्यों को दूषित नहीं ठहरा सकते, वो बड़े विवेकवान थे और बड़े ज्ञान संपन्न थे। तो बात यह है कि स्थापना निक्षेप से जब भगवान की आराधना करते हैं अपन, तो भगवान स्थापना निक्षेप में विराजमान होते हैं, प्रतिमा के रूप में रहते हैं, अथवा जब अपन पुरस्करण विधि करते हैं, ये एक विधि है, आपने पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र के नवम अध्याय में एक शब्द आता है, 22 परिषहों में एक सत्कार पुरस्कार नाम का परिषह है। सत्कार पुरस्कार का अर्थ क्या होता है? सत्कार का अर्थ पूजा जयमाला होता है, और पुरस्कार का अर्थ क्या होता है? पुरस यानी सामने और कार यानी करना, पुरस्करणम पुरस्कार, पुर सम्मुखम इत्यर्थ, पुर यानी पुर माने सम्मुख। अब इसमें देखिए अपन विचार करें कि पहले भगवान को सामने लाएंगे या पहले पूजा कर लेंगे और बाद में भगवान को सामने लाएंगे? सीधी सी बात है कि पहले भगवान को सामने आमंत्रित करेंगे, अत्रावतरावतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो भव, ये अपन पहले उनको उनका पहले स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर उनका सत्कार करेंगे। देखिए अपन लोक में भी जब बोलते हैं स्वागत सत्कार बोलते हैं, सत्कार स्वागत बोलते हैं, बोलो स्वागत सत्कार होता है ना, तो पुरस्कार शब्द का अर्थ है स्वागत, यानी अच्छे शोभनीक ढंग से। सु का अर्थ होता है शोभनीक और आगत का अर्थ होता है उनको आगत करना, उनके अवगत करना, उनको आमंत्रित करना। तो ये प्रक्रिया है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने पहले सत्कार और बाद में पुरस्कार क्यों लिखा? परिषयों में 22 परिषय के अंदर आप देखिए सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि, ये परीक्षाओं के अंत में नाम है ना, सत्कार पुरस्कार लिखा है, पुरस्कार सत्कार क्यों नहीं लिखा? तो इसका समाधान बड़ा सरल है कि सूत्र निर्माण का एक नियम होता है कि सूत्र में कम अक्षरों वाले शब्द को पहले लिखना पड़ता है और अधिक अक्षर वाले शब्द को बाद में लिखना पड़ता है। ये सूत्र निर्माण का नियम है, तब इस नियम का उल्लंघन कौन कर सकता है? इसमें एक अपवाद अवश्य है। अपवाद यह है कि यदि अधिक अक्षर वाला शब्द पूज्य हो तो उसको कम अक्षर वाले शब्द से पहले रखा जा सकता है, जैसे ज्ञान और दर्शन, ये दो शब्द। अब इन दो शब्दों में ज्ञान कम अक्षर वाला है, दो अक्षर है उसमें, और दर्शन कितने अक्षर वाला है? तीन अक्षर वाला। अक्षर तो आप लोग सीख चुके हैं, बीच बीच में थोड़ा अभ्यास कर लिया करो ताकि वो स्मृति में बना रहे। अपन अक्षरों की गणना सीख चुके हैं, अपन मात्राओं की गणना भी सीख चुके हैं, स्वर व्यंजन लघु गुरु दीर्घ ह्रस्व ये सब अपन पढ़ चुके हैं। इसी नमोकार सत्र में अपन ने पढ़ा है, नमोकार व्याख्यान माला के अंतर्गत अपन ने ये सब सीखा है। तो अब अपन विचार करते हैं कि ज्ञान दो अक्षर वाला है, दर्शन तीन अक्षर वाला है, फिर तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने क्या किया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या हो गया? सम्यक दर्शन। अब सम्यक तो तीनों के साथ लगाना है, तो अपन यहां से लेते दर्शन, दर श न, तीन अक्षर हो गए। फिर ज्ञान दो अक्षर हुए, चारित्राणि चार अक्षर हो गए, चा रित त्रा णी। तो क्रम क्या होना था? सबसे पहले ज्ञान होना था सूत्र बनाने के नियम के अनुसार, फिर दर्शन होना था, फिर चारित्राणी होना था। लेकिन क्या हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी नहीं लिखा। कारण क्या? तो बोलते हैं कि दर्शन पूज्य है और दर्शन होता है, सम्यक दर्शन जब होता है तब ज्ञान में पूज्यता आती है और तभी चारित्र पूज्य होता है। सम्यक शब्द का अर्थ पूज्य, जो भली भांति पूज्य होता है उसको सम्यक कहते हैं। सम्यक के और भी अर्थ होते हैं, सम्यक का अर्थ यथावत भी होता है, सम्यक का अर्थ संतुलित भी होता है, व्यवस्थित भी होता है। यहां पर सम्यक दर्शन में सम्यक शब्द का अर्थ है भली भांति पूज्य, और ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखा है अंचु गति पूजन यो। अंचु धातु से ये सम्यक शब्द की निष्पत्ति हुई है, सम उपसर्ग लगा है और अंचु धातु में क्विप प्रत्यय करके व्याकरण के अनुसार जो भी व्याकरण जानने वाले श्रोता होंगे वो समझेंगे, सम्यक शब्द की निष्पत्ति होती है और वो एक अव्यय जैसा बन जाता है, उसमें कोई विभक्ति आदि कुछ भी नहीं लगा सकते आप, सम्यक एक बन गया, शब्द बन गया। समीचीन अर्थ भी होता है सम्यक का। तो सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक बनता है, इसलिए सम्यक्त को कारण कहा है, ज्ञान को कार्य कहा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का कार्य है। इसलिए पूज्य होने के कारण दर्शन को तीन अक्षर वाला होते हुए भी पहले रखा गया है सूत्र में, और ज्ञान दो अक्षर वाला है, कम अक्षर वाला है, उसको फिर भी बाद में रखा गया है। लेकिन सत्कार पुरस्कार में क्या करेंगे? आचार्य उमा स्वामी ने पुरस्कार को बाद में लिखा है। भले अपन क्रिया करते समय पुरस्कार की क्रिया पहले करें, स्वागत पहले करें, सत्कार बाद में करें। सत्कार का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? सत्कार का अर्थ क्या है? सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में हम आचार्यों की वाणी बता रहे हैं आपको, कुछ भी अपन अपने दिमाग से कुछ भी यहां काम न करें। ये जिन शासन, अपन निज शासन क्यों चला? जिन शासन में जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसी में से अपन देख लें। सत्कार का अर्थ क्या लिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 22 परिशयों वाले सूत्र में? सत्कार पूजा प्रशंसात्मक। तो पूजा भी आ गई सत्कार में और प्रशंसा भी आ गई प्रशंसा क्या है? जयमाला। जयमाला में अपने को वैराग्य की भावना नहीं माना है, जयमाला में अपने को अपनी दुर्दशा का वर्णन नहीं करना भगवान के सामने, जयमाला में अपने को भगवान की प्रशंसा करनी है, उनने किन किन दोषों पर जय प्राप्त की है इसका वर्णन कहलाता है जयमाला। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल सरल सी बात है, शब्द ही बता रहा है जयमाला का अर्थ क्या है। उन्होंने जिन पर विजय प्राप्त की, प्रशंसात्मक पूजा कर ली आपने, अष्ट द्रव्य से पूरी पूजा संपन्न कर ली, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने जिन दोषों को जीता है, उस जीत का आप बखान कर रहे हैं, इसका नाम जयमाला है। जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति लास्ट में बोल देते हैं अंत में। तो ये पुरस्करण, पहले स्वागत करते हैं अपन। देखो भगवान मंदिर में है, कोई आपत्ति नहीं है, जिन प्रतिमा है पूरी विधि के साथ प्रतिष्ठित की गई है और बड़े धूमधाम के साथ उनको वहां विराजमान किया गया है, लेकिन तो भी अपन जब पूजा करने बैठते हैं तो पूजा करते समय आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं आचार सार ग्रंथ में, दो बार उन्होंने ये उल्लेख किया है। क्या कह रहे हैं वो? चंद्र प्रभ जिनेन्द्रोयम प्रतिबिंबाक्षत आदिशु, ये चंद्रप्रभ जिनेन्द्र है ऐसा प्रतिमा में और अक्षत आदि में जो अपन संकल्प करते हैं उसका नाम स्थापना निक्षेप है, उसका नाम स्थापना सत्य है। चंद्रप्रभ भगवान का नाम लेकर के उन्होंने ये श्लोक लिखा है। और सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य थे, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य वो आचार्य होते हैं जिनको षटखंड आगम के संपूर्ण सिद्धांत पर अधिकार प्राप्त होता है। अधिकार का अर्थ होता है उनका ज्ञान इतना विशद होता है कि षटखंड आगम के किसी भी सूत्र में वो चूक नहीं सकते। वो सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाते हैं। और षटखंड आगम में छह खंड है, षट यानी छह और खंड यानी खंड विभाग, उसके विद्वान आचार्य ये लिख रहे हैं स्थापना में। स्थापना सत्य में भी वो यही उदाहरण दे रहे हैं, स्थापना निक्षेप में भी यही उदाहरण दे रहे हैं। चंद्र प्रभ जिनेन्द्रोयम प्रतिबिंबाक्षत आदिशु, प्रतिबिंब का अर्थ प्रतिमा होता है और अक्षत आदि यानी अक्षत पुष्प ये दूसरे ये पदार्थ होते हैं, इनमें जिनेन्द्र भगवान की स्थापना करना है। वसुनंदी श्रावकाचार में लिखा है कि हुंडाव सर्पिणी काल में अतदाकार स्थापना निषिद्ध है, ठीक है ना? तो फिर ये चावल में जो स्थापना कर रहे हैं, अक्षत में पुष्प में स्थापना कर रहे हैं, वो तो भगवान का आकार नहीं है। तो फिर अतदाकार स्थापना कर रहे हैं तो क्या आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती और आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती दोनों में मतभेद था? जब दोनों ही षटखंड आगम के विद्वान थे तो दोनों में मतभेद कहां से आ गया? तो समाधान यह है कि कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जो गाथा लिख रहे हैं हुंडाव सर्पिणी काल में अतदाकार स्थापना नहीं करना, वो प्रसंग देखने योग्य है। किस प्रसंग में उन्होंने वो गाथा लिखी है? वो प्रतिष्ठा विधि के प्रसंग में लिखी है। तो अतदाकार स्थापना आपको प्रतिष्ठा विधि से नहीं करनी है, ये उसका अर्थ होता है सीधा सीधा। और यहां क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? यहां वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ये कह रहे हैं कि आप जब पूजा कर रहे हो तब जो पुरस्कार विधि करोगे, ठोने पर जब आप स्वागत करोगे भगवान का, अपने निकट बुला करके आप करोगे, तब आप कर सकते हो अतदाकार स्थापना। प्रतिष्ठा विधि से मत करना अतदाकार स्थापना। वो थोड़ी कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा विधि से अतदाकार स्थापना करो। इतनी बात समझने की होती है। और समझ में न आने से कभी कभी आग्रह उत्पन्न हो जाता है, और आग्रह उत्पन्न होने से कभी कभी कषाय भी उत्पन्न हो जाती है, कड़वाहट आ जाती है, एक दूसरे से विवाद शुरू हो जाते हैं। पर ये स्यादवाद का जगत है जैन शासन। जैन शासन स्यादवाद प्रधान है, इसलिए यहां पर विवाद को कोई स्थान नहीं है। स्यादवाद तो निर्विवाद होता है, विवाद का जन्म हठवाद से होता है। यहां जब स्यादवाद है तो हठवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। वो वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा विधि में अतदाकार स्थापना हुंडाव सर्पणी में वर्जित है, खत्म बात। अब अपन यहां मंदिर में जो अपन पूजा करने बैठ रहे हैं वहां कोई प्रतिष्ठा विधि थोड़ी कर रहे हैं, वहां तो अपन उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको यहां पर सुख प्रतिष्ठक में उनको विराजमान कर रहे हैं पूजा के काल पर्यंत, हमेशा के लिए तो नहीं कर रहे हैं। और फिर भगवान की भक्ति कर रहे हैं अच्छे धूमधाम से, तो उसका कोई परस्पर कोई विरोध नहीं है। दोनों आचार्य बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है। बात दूसरी कह रहे हैं, अपने को समझने में थोड़ी सी अपन त्रुटि कर रहे हैं, उस त्रुटि को निकाल दो तो फिर बात स्पष्ट हो जाती है। अब क्या बोलते हैं अपन भगवान को आमंत्रित करते समय, हे पार्श्व जिनेन्द्र, बीजाक्षर भी लगाते हैं, ओम ह्रीम अरहम जो भी अपन लगाते हैं, वो जैसी पूजा में लिखी हुई वो पंक्ति उस प्रकार से लगाते हैं। श्री पार्श्व जिनेन्द्र, अब वो क्षेत्र के अनुसार, अहिच्छत्र पार्श्व जिनेन्द्र, देवपुरी पार्श्व जिनेन्द्र, महुआ जी पार्श्व जिनेन्द्र, जो भी जहां के भी आप नाम ले लें, नेमगिरी पार्श्व जिनेन्द्र, शिरपुर पार्श्व जिनेन्द्र, बहुत सारे, सबसे ज्यादा पार्श्व जिनेन्द्र ही है मंदिरों में, आप देखना पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक पार्श्वनाथ भगवान की जिन बिंब मिलते हैं। अत्र अवतर अवतर संवौ षट, यहां अवतरित होइए, अवतरित होइए अर्थात आप वहां विराजमान है, वहां से उतरकर यहां आइए। हम प्रतिमा की अभिनय नहीं कर रहे हैं, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा पास बुला करके भक्ति करना चाहते हैं। दूर से भक्ति करने पर भी भक्ति तो होती है, लेकिन निकट से करने पर बहुत अच्छा लगता है। आप गुरुओं के दर्शन करते हो, गुरु स्टेज पर विराजमान और आपको हाँ भीड़ में पीछे खड़े होकर के उनके दर्शन कर रहे हो, और अगर आपको निकट से दर्शन करने मिल जाए तो आप अधिक पसंद किसको करोगे, ये सोचने की बात। तो इसी तरह मैं भी आपको पास में बुला रहा हूं, अत्र अवतर अवतर, यहां उतरिए, यहां उतरिए। अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अब भक्त को पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना को नकारेंगे नहीं, मैंने आमंत्रित किया है तो आ गए भगवान और अपने अंतश्चक्षु से देखने पर मुझे दिख भी जाते हैं भगवान। और अत्र तिष्ठ तिष्ठ, इन अक्षतों में, इन पुष्पों में तिष्ठ यानी विराजिए विराजिए विराजिए। भले ही आकार वैसा हो लेकिन भक्ति की आंख से अपन को भगवान के दर्शन हो सकते हैं वहां पर। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह, ये भी अव्यय है, ठह स्थापना का वाचक होता है, माने स्तंभन का वाचक होता है, ठह रोकने का, विराजिए बस, अब आप कहीं जाइए मत, ठह इसका सूचक होता है। दो दो बार बोलते हैं अपन भगवान से, अंदर से बाहर से, दो दो बार बोलते हैं ठह ठह। फिर अपने को स्थापनम बोलने की या फिर आवानम बोलने की, अब देखिए आवानन ये एक अशुद्ध उच्चारण बहुत लोगों के मुख से निकलता है, आवानन नहीं है, आवानम है। मां को न कैसे बना दिए भगवान जाने, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं, सब मनुष्य, अपन भूल तो सबकी क्षमा करने योग्य होती है, अपराध दंडनीय होता है, अपराध के लिए प्रायश्चित दंड वगैरह होते हैं लेकिन भूल क्षम्य होती है। तो भगवान को विराजमान कर दिया, रोक लिया, अब भक्त और भी अपनी विनय प्रकट करते हुए कह रहा है कि अत्र मम सन्निहितो भोगो वशट, हे भगवान ये सब उपक्रम मैंने क्यों किया। तो अत्र मम सन्निहितो भवो, आप मेरे सन्निकट हो जाओ बस, जब तक मैं पूजा कर रहा हूं तब तक आप मेरे से दूर मत जाना। ये एकदम बच्चे जैसा आग्रह है, बच्चा मां से जिद करता है, भक्त भगवान से बोलता है कि बस अब आप यहीं रहना, मेरे सन्निकट रहना। मम सन्निहितो, मेरे सन्निकट हो जाओ। भव भव वशट, ये भी एक अव्यय है। ये सब अव्यय जो है प्रतिनियत है, जैसे आह्वान क्रिया में संवोषट, ये अव्यय प्रतिनियत है, निश्चित है, निर्धारित है। फिर स्थापन क्रिया में ठ ठ, उनको रोकने वाला अव्यय चाहिए। फिर सन्निधिकरण में संवोषट, नहीं संवोषट वशट, सन्निधिकरण में वशट, बस अब यहां पर रहिए आप मेरे पास, मैं आपको अपने पास निकट कर रहा हूं। तो वहां पर ये प्रतिनियत अव्यय है। ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं अव्यय, तो अव्ययों का प्रयोग करके इस प्रकार से अपन पुरस्करण विधि, ये पुरस्करण विधि अगर कोई व्यवस्थित कर ले तो पूजा से पहले ही उसकी भक्ति में चार चांद लग जाए। समझ रहे ना बात को? अब आप उस ये पुरस्करण विधि कर रहे हैं और आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे आप 3 उपवास करके बैठे हो एकदम। हमें कई बार देख करके अजीब सा लगता है कि स्वागत अपने आराध्य का किया जा रहा है और चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों? कभी कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी कभी बुखार और कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कभी तकलीफ भी रहती है। चलो वो स्थिति अपन छोड़ देते, गौण कर देते, लेकिन ऐसा प्रतिदिन ना हो। चलो वो माफ है कि अगर आपकी अवस्था प्रतिकूल है तो उस समय आप जैसा बने वैसा कर लो, लेकिन जब आप स्वस्थ हो तब आह्लाद होना आवश्यक। पड़गान करते समय कोई रोता है क्या? खुशी के आंसू निकलते हैं, कोई रो नहीं सकता वहां पर। भगवान का अपन आह्वान कर रहे हैं, एक प्रकार का पड़गान हो गया समझ लो। उसके बाद अपन एक प्रकार से उच्चासन भी दे दिया अपन ने, पड़गान हो गया अवतर अवतर और उच्चासन हो गया ठा ठा, सन्निधिकरण करके फिर अपन पूजा प्रारंभ करते हैं। और इन सब विधियों के पहले अपन भगवान का अभिषेक कर लेते हैं और चौके में गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। थोड़ा सा क्या है कि गुरु की और भगवान की पूर्णतः समकक्षता नहीं है, कुछ भेद है, इसलिए थोड़ा सा अंतर है प्रक्रिया में। और पाद प्रक्षालन के पश्चात आप अर्चना करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर 4 शुद्धियां बोलते हैं, प्रतिग्रहण, उच्चासन, पादप प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम और चतुर्विध शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और एष्णा शुद्धि। एष्णा शुद्धि यानी भोजन की शुद्धि, आहार जल शुद्धि। तो ये प्रक्रिया होती है। और यहां पर भी आप देखिए क्या हो रहा है। अब अपन अष्ट द्रव्यों से भगवान की अर्चना करते हैं, अरहंत देव की अर्चना कर रहे हैं अपन, और अर्चना करते समय अपन भगवान का गुणगान करते हुए अर्चना करते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी पूजा पूरी हो जाए फिर भगवान का उसमें कुछ भी ना हो। क्या है कि युग का प्रभाव है, अध्यात्म के प्रति लोगों की रुचि तो बढ़ी लेकिन अध्यात्म का समावेश परमात्मा की आराधना में किया जाने लगा। जबकि आगम पद्धति ये कहती है कि आप परमात्मा की आराधना में भक्ति मार्ग पकड़ो और आत्मा की आराधना में अध्यात्म मार्ग पकड़ो। ये दोनों भिन्न विधाएं हैं। परमात्मा की आराधना अध्यात्म से नहीं होगी, भक्ति से होगी, और आत्मा की आराधना भक्ति से नहीं होगी, अध्यात्म से होगी। ये तत्व विवेक अपेक्षित है आराधक के पास या उपासक के पास। तो परमात्मा की आराधना में शब्दावली ऐसी हो जिसमें आत्मा की महिमा का बखान न करके परमात्मा की महिमा का बखान हो, उनका गुणगान हो। एक हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, कोटा के विद्वान श्रीयुत युवल जी ने पूजा केवल रवि किरणों से लिखी थी। अब उसका इतिहास क्या है वो जाने, लेकिन उनके नाम से आज वो सभी पुस्तकों में प्रकाशित उपलब्ध होती है। उसमें कुछ पंक्तियां ऐसी आ रही है जिस पर पुनर्विचार अपेक्षित है। वो पंक्तियां कौन सी है, जैसे उसमें एक पंक्ति आती है, उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, परसे न लगा हूं किंचित भी। अब ये जो है ये निश्चय नए से प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप है। क्या? उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, परसे न लगा हूं किंचित भी। ये निश्चय नए से आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। पूजा में आत्मा के स्वरूप का अपने को वर्णन नहीं करना है, पूजा में परमात्मा के स्वरूप का अपने को वर्णन करना है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने पर वो अध्यात्म की ओर अपनी मति जाती है, और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने पर भक्ति जागृत होती है। क्योंकि भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। आप जानते होंगे कि जो जितना नीचा होगा और भगवान को जितना ऊपर मानेगा, अपनी श्रद्धा में भगवान मेरे से कितने ऊंचे हैं, कितने बड़े हैं, यहां पर हाइट की बात नहीं कर रहे अपन, अपनी लघुता और भगवान की श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अपने को पर्यायार्थिक नए से विचार करना होगा कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा और परमात्मा दोनों में समानता होते हुए भी पर्यायार्थिक नए से उनमें और मुझमें कितना अंतर है। मैं उनका अतीत हूं और वो मेरे भविष्य हैं। अर्थात मैं उनकी भक्ति करके कालांतर में, भविष्य में उनके जैसी साधना करके वैसा हो सकता हूं। अत्यंत कठिन कार्य है, अंतिम कार्य है उनके जैसा हो जाना। करने योग्य कार्यों में अंतिम कार्य है, उसके बाद कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। तो क्या हुआ, वो मेरे भविष्य हुए कि नहीं और मैं उनका अतीत हुआ कि नहीं? वो पहले मेरे ही समान थे ना, वो भी एक साधारण संसारी प्राणी थे कि नहीं? जिन शासन, जिन मत के अनुसार आप देखें, जितने भी परमात्मा है, चाहे अरहंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, वो पूर्व काल में क्या थे? क्या वो अनादि परमात्मा थे? नहीं, वो भी आत्मा थे। वो आत्मा से शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते करते परमात्मा हुए, परम हो गए। बस क्या हुआ, शुद्धिकरण करने पर घटना क्या घटी? जो पहले मात्र आत्मा थी, अब उसके साथ परम ये विशेषण लग गया और परम में आत्मा की संधि कर ली और समास बना लिया कर्मधारय परमश्चासो आत्मा। परम आत्मा उत्कृष्ट आत्मा हो गया। उत्कृष्ट क्यों? क्योंकि अब कोई अशुद्धि नहीं रही उनमें, कोई दोष नहीं रहा। जब तक आत्मा थे तब तक उनमें कर्म बंधन, नोकर्म बंधन और भाव कर्म चलते थे। अब वो बहुत ऊपर पहुंच गए। तो जो अपने आप को जितना लघु समझेगा और उनको जितना गुरु समझेगा, उतनी प्रबल भक्ति होगी। और अगर अपन समकक्ष समझेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो अपन ने ये पंक्ति पढ़ी, उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु परसे न लगा हूं किंचित भी, तो कैसा लगता है कि भगवान को देखकर ऐसा लगता है कि इक्वल है हम और आप, कोई हम दोनों में अंतर नहीं है ऐसा लगता है। और अंतर का अभाव करने पर भक्ति नहीं होती, समानता में कभी भक्ति नहीं होती, भक्ति छोटा होने पर ही संभव है। जैसे उदाहरण हम देते हैं कि किसी का कोई मित्र उससे 15 वर्ष बाद मिलता है तो क्या परस्पर चरण स्पर्श करते हैं, या एक चरण स्पर्श करता है और दूसरा आशीर्वाद देता है? साधु नहीं बने अभी दोनों में से कोई भी, दोनों एक ही जैसी हालत में है। ये लखपति है तो वो भी लखपति है, ये करोड़पति है तो वो भी करोड़पति है, ये रोडपति है तो वो भी रोडपति है, तीन दोनों इक्वल है, तो क्या करते हैं? समकक्ष में भक्ति नहीं होती, समकक्ष में मित्रता होती है। तो इसलिए पूजा में इस बात का अपने को ध्यान रखना होगा कि जो शब्दावली है वो भगवान को ऊपर स्थापित करने वाली शब्दावली हो, भगवान की उत्कृष्टता को स्वीकार करने वाली शब्दावली हो, तब भक्त को आनंद आएगा कि ओहो मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान। अब भक्त तो कहता है मेरे भगवान, भगवान नहीं कह सकते कि मेरा भक्त, क्योंकि भगवान का वो भक्त नहीं है अकेला, भगवान के असंख्यात भक्त है। भक्त कह सकता है कि ये ही मेरे भगवान है, लेकिन भगवान नहीं कह सकते कि ये ही मेरा भक्त है। अब फिर भगवान की भक्ति करते समय जल, गंध, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल, इनसे भगवान की अर्चना करते हैं, मांडना बनाकर विधान करके पूजा भी करते हैं, और फिर नंदीश्वर दीप की जो देवकृत महामहिम पूजा, जिस नंदीश्वर को भी कल्याणक ही कहा है, वहां 8 दिनों का कल्याणक चलता है भगवान का, पर वो स्थापना निक्षेप से भगवान विराजमान रहते हैं वहां पर। यहां पर जो भगवान के कल्याणक होते हैं वो भाव निक्षेप वाले भगवान के होते हैं, वहां पर स्थापना निक्षेप से होते हैं। तो उसमें एक बात और लिखिए कि चूर्णों से भी भगवान की अर्चना करते हैं, वस्त्रों से भी भगवान की अर्चना करते हैं देवलोग। कैसे करते हैं? तो इस विषय में फिर शास्त्रों में अनुसंधान करने पर तिलोय पंडित ग्रंथ के 5वें महाधिकार में लिखा हुआ मिला कि वस्त्रों से कैसे अर्चना करते हैं। तो बोले कि भगवान की जब भी पूजा अभिषेक आदि विधियां होती है तो भगवान के ऊपर एक चंदोबा लगा कर ही वो अर्चना करते हैं, तो ये वस्त्र पूजा कहलाती है। बिना चंदोबा के भगवान का अभिषेक या भगवान की पूजा नहीं की जाती, तो ये वस्त्र पूजा कहलाती है। आप देखिए अंचलिका में दिव्य ही वासे ही, दिव्य ही नाणे ही, दिव्य ही गंधे ही, दिव्य ही पुप्पे, ये जो शब्द आते हैं ना कुंदकुंद आचार्य द्वारा लिखे थे, उसमें वासे ही का अर्थ है वस्त्र ही, वस्त्रों के द्वारा, वासस शब्द वासो भी, वासे ही प्राकृत में वासो भी का वासे ही बन गया है, वासस शब्द होता है एक संस्कृत में, नपुंसकलिंग में उसके रूप चलते हैं वासस, वाससी, वासांसी, ऐसे रूप चलते हैं, और तृतीया के बहुवचन में वासो भी ही बनता है। वस्त्रों के द्वारा भगवान की अर्चना करते हैं तो वो ऊपर चंदोवा लगाना भी भगवान की भक्ति है। तो इस तरह ये थोड़ी सी चर्चा पूजा की होगी। फणा की चर्चा अपनी अभी चल रही थी, तो फणा की चर्चा में अपन आज हमने इस श्लोक का अर्थ भी निकाला और अर्थ निकालने पर जो अर्थ हिंदी में है संभवतः मूल संस्कृत से जो अर्थ निकल रहा है वो उससे कुछ भिन्नता को प्राप्त हो रहा है। हम अभी और इसमें थोड़ा श्रम करना चाहते हैं, अभी तत्काल आपके सामने प्रस्तुत न करते हुए इसमें और श्रम करके और खोज करके और अनुसंधान करके शोध करके फिर आपके समक्ष इसको प्रस्तुत करेंगे। तो फणा का जो विषय चल रहा है उसको आप स्मरण में रखिएगा कि जब भगवान पार्श्वनाथ पर भयंकर उपसर्ग हुआ था तब नाग कुमार देवों ने, यानी दो ही आए थे वो पति पत्नी धरणेंद्र और पद्मावती, इन्होंने ये उपसर्ग निवारण के समय ये सब प्रक्रिया की थी। कैसे की थी इसकी चर्चा अपन देखेंगे। वो फोटो एक मिनट, अभी वो दीदी यहां पर इसमें ज्वाइंट है क्या जिनके पास अमरावती का फोटो है? हमारे पास भी था लेकिन एक मिनट हम निकालते हैं।
क्या नाम है उनका गुरुदेव?
उनका नाम शिखा दीदी है, प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी है।
देखते अगर वो फोटो वो ज्वाइन हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। शिखा जैन के नाम से तो कोई है लेकिन इससे समझ में नहीं आ रहा है।
भगवान महावीर के ऊपर जो फणा है वो दिखाएंगे।
इच्छा कर महाराज।
हाँ जी आशीर्वाद
जी। मैम
महावीर भगवान के ऊपर बड़ा सुंदर फणा है, देखो शायद हमारे पास भी फोटो आ गया। हाँ मिल गया, तो अब चाहे दीदी दिखाए या हम दिखा दे, दोनों दिखा सकते।
आप दिखा दीजिए महाराज, हम भी दिखा सकते हैं, है मोबाइल में है हमारे।
चित्र कैसा दिख रहा है वहाँ दोनों? कुछ आ रहा है बीच में, डिस्टर्बेंस आ रहा है? अच्छा नहीं, हमें
वो महाराज जी वहाँ पर कांच लगे हुए हैं तो परछाई आती है।
हम समझ रहे हैं
वहाँ पर वो कांच लगे,
हम जान रहे हैं इस बात।
अच्छे से ले आएंगे।
नहीं नहीं ये फोटो भी अच्छा है, इसमें नीचे शेर स्पष्ट दिख रहा है।
दिखाइए, दिख रहा है ऐसे, बस थोड़ी लाइट पड़ रही है, इधर उधर करके दिखाएंगे तो दिख जाएगा।
ये आपको फणा दिख रहा है?
जी दिख रहा है बिल्कुल।
अब नीचे शेर को देखिएगा।
हाँ शेर भी दिख रहा है जी, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है।
उस बात का प्रतीक है कि भगवान उपसर्ग विजेता है, ये फणा उपसर्ग विजेता का प्रतीक है।
एक बार फिर से दिखा दीजिए ना महाराज।
ये सुपार्श्वनाथ भगवान के साथ भी ऐसा ही है, महावीर भगवान के साथ भी है और पार्श्वनाथ भगवान के साथ तो है ही है।
आपको एक वो दिखाऊं क्या अभी?
अभी रुको, पहले अंतिम मंगलाचरण और सब विधि पूरी करने के बाद ही अपन और कुछ कर सकते हैं ना।
ये इसको डबल
ठीक है ना,
तो दिखेगा ना।
ये महाराज जी दिखा रहे हैं।
आप दिखा रहे हो?
हाँ महाराज जी। हाँ दीदी स्पष्ट दिख रहा है एकदम। जी गुरुदेव देख, सबने देख लिया है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है सबको।
अब अपन फणा की चर्चा और आगे बढ़ाएंगे, आज अपन इतने ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।